भागवत सार की श्रृंखला में दसवें स्कंद के 45वें अध्याय पर चर्चा है। इसका शीर्षक है कृष्ण के द्वारा गुरु के पुत्र का उद्धार या गुरु के पुत्र को वापस लाना। तो इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया आप सब दोहराए। श्री शुक उवाच पितरा उपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः मां भूदिति निजमायाम् तथा न जनमोहिनीम्। श्रीशुक उवाच इतरा उपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः मां भूदिति निजमायाम् तथा न जनमोहिनीम्। श्रीशुक उवाच इतरा उपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः मां भूदिति निजमायाम् तथा न जनमोहिनीम्।
श्रीशुक उवाच पितरावुपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः भूदिति निजाम् माया ततांजनमोहिनी
ततांजनमोहिनी।
श्रीशुक उवाच
श्रीशुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा माता पिता ने उपलब्ध अनुभव करने के बाद अर्थो भाव ईश्वर के रूप में उनका वैभवशाली पद विदित्वा जानकर पुरुषोत्तम परम पुरुष ने माँ भूत इति ऐसा नहीं होना चाहिए निजा अपनी माया माया को तथा विस्तार किया जन भक्तगण को मोहिनी मोहने वाली। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा यह जानकर कि उनके माता पिता उनके दिव्य ऐश्वर्य से अवगत हो चुके हैं, भगवान ने यह सोचा कि ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए, अतः उन्होंने अपने भक्तों को मोहने वाली अपनी योग माया का विस्तार किया। तात्पर्य यदि वसुदेव तथा देवकी कृष्ण को सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में देख लेते तो पुत्र के रूप में कृष्ण के प्रति उनका प्रबल प्रेम नष्ट हो जाता। कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे, वे तो उनके साथ वात्सल्य रस का आनंद लेना चाह रहे थे। जैसा कि श्री प्रभुपाद प्रायः इंगित किया करते थे, यद्यपि हम सामान्यतः ईश्वर को परम पिता के रूप में सोचते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश करके उनके माता पिता का अभिनय करके उनके प्रति अपने प्रेम को प्रगाढ़ बना सकते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संकेत करते हैं कि जन शब्द का भक्तों के रूप में किया जा सकता है, जैसा कि जन शब्द का अर्थ भक्तों के रूप में किया जा सकता है, जैसा कि भागवत के श्लोक दीयमानान गृह्णाति बिना मत सेवनम जना में आया है। उनके अनुसार जन का माता पिता के रूप में भी अर्थ किया जा सकता है, क्योंकि जन शब्द जन धातु से बना है जिसका अर्थ है जन्म लेना। इस अर्थ में जैसा कि जननी या जनक जनकों में है, जन मोहिनी से सूचित होता है कि भगवान अपने अंतरंग शक्ति का विस्तार करना चाह रहे थे, जिससे वसुदेव तथा देवकी पुनः उन्हें अपने प्रिय पुत्र की भांति प्यार कर सके। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोग सुन चुके हैं कि कैसे कंस का वध हुआ, कल चर्चा की थी, और श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया बंदी गृह से, और फिर अब कल हमने सुना था कि जैसे ही उनके माता पिता के चरण स्पर्श किए श्री कृष्ण ने, वे लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए ऐश्वर्य भाव में आदर देते हुए, ये जानते हुए कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, क्या करना चाहिए, इनको आलिंगन करें ये ना करें, खड़े रहें, तो ऐसे अवस्था में वो खड़े रहे वहाँ पर। तो अब जब श्री कृष्ण ने देखा तो अब जब श्री कृष्ण ने देख लिया कि इनके अंदर ये ऐश्वर्य भाव आ गया, ये तो अपना पुत्र नहीं मान रहे हैं। कृष्ण आशा कर रहे थे कि जैसे ही चरण स्पर्श करेंगे, गोद में उठाएंगे, आलिंगन करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। तो इसीलिए यहाँ इस श्लोक में हम लोग देखते हैं कि कृष्ण ने अपनी योग माया का प्रभाव भक्तों पर किया, वो माया जो भक्तों को प्रभाव करती है। जो भक्त नहीं है उनको महामाया प्रभाव करती है, जो भक्त है उनको योग माया प्रभाव करती है, जिसके प्रभाव में वे कृष्ण को अपना पुत्र, अपना प्रेमी, अपना सखा मान सकते हैं। तो ऐसे वो कार्य करते हैं। तो श्री कृष्ण ने पहले 11 श्लोकों में इस अध्याय के अपने माता पिता को शांत बना दिया है कि किस तरह हम लोग दूर थे इत्यादि, और फिर 12वें श्लोक से आगे वो वर्णन करते हैं 19वें श्लोक तक कि किस तरह सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का, कंस को तो मार दिया था और कंस ने उग्रसेन को भी बंदी बना रखा था, तो उनको राजा बनाया। और फिर आगे वर्णन करते हैं कि अब राजा तो बना दिया, और फिर आगे 20 से 25 श्लोक में वर्णन है कि नंद महाराज को कैसे शांत बना दिया उन्होंने कि ठीक है आपको वापस जाना है। और फिर आगे के श्लोकों में 26 से लेकर 36 तक कृष्ण बलराम अध्ययन करने जाते हैं सांदीपनि मुनि के आश्रम में, और फिर वर्णन है कि कैसे 37वें श्लोक से 46वें श्लोक तक वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं, जो गुरु दक्षिणा उनके गुरु ने मांगी। और अंतिम विभाग इस अध्याय का है कि दक्षिणा देने के बाद फिर गुरु संतुष्ट होकर उनको गुरुकुल से वापस भेज दें। तो ऐसे ये पूरा अध्याय है, बड़ा सुंदर अध्याय है, बहुत से निर्देश इस पूरे अध्याय में हैं। समय अनुसार थोड़ा थोड़ा चर्चा हम लोग करेंगे। तो जब श्री कृष्ण ने ये अपनी योग माया का प्रभाव किया, और फिर उन्होंने अपने माता पिता से बात करनी प्रारंभ की बहुत नम्रता से, वर्णन है कि सर झुकाकर हाथ जोड़कर वो अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, और वो कहने लगे कि हमारे कारण आपको इतना कष्ट हुआ, जेल में डाला, कंस ने कष्ट दिया, बेड़ियों में रखा, केवल हमारे कारण, क्योंकि हम लोगों से कंस को वैर था, तो हमारे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ है, और केवल वो कष्ट नहीं जो आपने कारागृह में सहा, आपने हमारे बाल्यपन का जो आनंद लेना था वो भी नहीं दिया। माता पिता के लिए वो एक बहुत बड़ा आनंद होता है जब बच्चा बड़ा छोटा सा होता है और वो बड़ी लीलाएं करता है बच्चों की लीलाएं, तो वो बड़ा आनंद का विषय है, स्वाभाविक बड़ा अच्छा लगता है कि क्या किया बच्चे ने। आजकल तो लोग पूरा उसका वीडियो बना कर रखते हैं, फिर बड़ा होता है तो दिखाते हैं कि देखो जब तुम छोटे थे तो क्या करते थे, तो माता पिता को बड़ा आनंद आता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपने वो सारे जो आनंद हैं हमारी वजह से आपको वो आनंद भी नहीं मिले, और इतना ही नहीं कि आपको नहीं मिले, हम भी वो जो बचपन में होता है कि माता पिता का हमको प्रेम मिलता है या माता पिता बहुत लाड प्यार करते हैं, वो भी हमें भी नहीं मिला, अर्थात आपसे नहीं मिला, वहां तो मिला बहुत सारा लेकिन आपसे नहीं मिला। तो वो भी नहीं मिला। तो ऐसे वो कहने लगे कि हमारा जो जीवन था ऐसे ही चला गया और आप तो आपका हम कुछ कर नहीं पाए, आपको हम कुछ मदद नहीं कर पाए, सेवा नहीं कर पाए, आनंद नहीं दे पाए, ऐसे श्री कृष्ण कहने लगे। तो श्री कृष्ण का जो समय था, बचपन का समय, जैसे हम सब जानते हैं कि जब जन्म हुआ या जब भगवान गोकुल में प्रकट हुए तो करीब 3 साल और 4 महीना वे वहाँ महावन में रहे थे। 3 साल और 4 महीना उन्होंने वहाँ लीला की, फिर वृंदावन चले गए और वृंदावन में 6 वर्ष की आयु तक रहे। 6 वर्ष और 8 महीना की आयु थी जब तक वो वृंदावन में रहे और फिर उसके बाद बाकी का सारा समय नंदग्राम में बिताया। तो नंदग्राम में वो करीब 10 वर्ष और 7 महीने की उम्र तक रहे। फिर उसके बाद वो मथुरा चले गए और मथुरा में करीब 18 वर्ष रहे। तो 10 साल की उम्र, करीब 28 साल के होंगे जब मथुरा को उन्होंने त्यागा, 28 वर्ष से थोड़ा सा अधिक, और फिर बाकी का समय उन्होंने द्वारका में बिताया। तो कृष्ण ने सबसे अधिक समय द्वारका में बिताया, वृंदावन में सबसे कम समय बिताया, लेकिन वृंदावन की लीलाएं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वृंदावन में सबसे कम समय 10 साल करीब, 18 साल मथुरा और फिर बाकी के इतने सारे साल उन्होंने, करीब 90 साल कहना चाहिए, ज्यादा है 100 साल करीब, या 90-100 साल के बीच में 125 वर्ष तक भगवान रहे, तो उन्होंने द्वारका में बिताया। तो श्री कृष्ण अब अपने माता पिता की ओर देखकर उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो वो कहते हैं, माता पिता का गुणगान करते हैं, अर्थात कुछ 2-3 श्लोकों में माता पिता के महत्व को वो कहते हैं। तो वो कहते हैं कि माता पिता व्यक्ति को शरीर देते हैं और इसीलिए उनके ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। अगर जीवन भर भी उनकी सेवा की जाए तो भी उनके ऋण को नहीं चुका सकते, माता पिता के ऋण को, जिन्होंने ये शरीर प्रदान किया है। और वो कहते हैं कि अगर कोई पुत्र क्षमता रखता है सेवा करने की माता पिता की और सेवा नहीं करता उनकी, तो वो कहते हैं कि उसको मृत्यु के बाद नरक प्राप्ति होती है और नरक में जाकर अपने ही मांस को खाना पड़ता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं माता पिता की सेवा नहीं करें तो नरक की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये होना चाहिए और वो कहते हैं कि जिसकी भी क्षमता है उसे कुछ लोगों को सहयोग या कुछ लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि जो माता पिता जो पूर्ण रूप से आश्रित हैं बच्चों पर, उनका ध्यान जरूर रखना चाहिए, या फिर जो पत्नी है उसका ध्यान रखना चाहिए, छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, ये कर्तव्य है व्यक्ति का, या फिर कोई ब्राह्मण जो आपकी शरण लेने आया है उसको कभी नकारना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, क्षमता होते हुए भी इन लोगों की रक्षा नहीं करता, इनका ध्यान नहीं रखता, तो वो कहते हैं कि वो जीते हुए भी मृत व्यक्ति के समान, अगर वो ये कार्यों को नहीं करता। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। भगवान क्षमा मांग रहे हैं अपने माता पिता से। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि माता पिता की सेवा का इतना गुणगान भगवान ने किया, नरक में जाएंगे अगर नहीं करें, मृत व्यक्ति के समान है। तो फिर हम लोग कई बार देखते हैं कि लोग संन्यास लेते हैं, वैराग्य लेते हैं, माता पिता की सेवा को त्याग देते हैं, तो क्या फिर उन्हें भी पाप लगता है? निश्चित पाप लगता है। किसी भी कारण से अगर हम माता पिता की सेवा को त्यागते हैं तो निश्चित पाप लगता है। तो फिर क्या किसी को भगवान की सेवा के लिए माता पिता को नहीं त्यागना चाहिए या अन्य किसी कारण के लिए? अन्य किसी कारण के लिए बिल्कुल नहीं त्यागना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए त्यागने में पाप लगता है या नहीं? पाप लगता है, निश्चित लगता है। अगर हम भगवान की सेवा के लिए भी माता पिता की सेवा को त्यागते हैं तो पाप लगता है। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि अगर आपने मेरे लिए ये जीवन लिया है तो अगर अल्पाप लगा भी है तो मैं हूं ना, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो। और फिर हम लोग शास्त्रों में सुनते भी हैं देव ऋषि उदारणाम प्रणाम न किं करो नायम ऋणि चराजम सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिवृत्त कर्तव्यम, कि जितने भी कर्तव्य हैं अगर हम भगवान की शरण चले जाते गतो मुकुंदम तो फिर जितने भी हमारे कर्तव्य हैं वो स्वतः पूरे हो जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हम वो कर्तव्यों को त्याग नहीं रहे। देखिए शास्त्र के शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हमने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया भगवान की सेवा कर ली कोई गलती नहीं है। नहीं, हम अपने कर्तव्यों को त्याग ही नहीं रहे हैं। क्यों? गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तव्य, जब आप मुकुंद की शरण चले जाते हैं तो आपके सारे कर्तव्य पूरे हो गए, आपने त्यागा नहीं अपने कर्तव्य को। और अगर दूसरी दृष्टि से माना जाए कि आपको पाप लगेगा तो कृष्ण कहते हैं अहम त्वम सर्व पाप। तो इसीलिए यहाँ जो भगवान गुणगान कर रहे हैं कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये तब तक जरूर करनी चाहिए जब तक हम श्री कृष्ण की पूर्ण शरण ना चले जाएं। और श्री कृष्ण की पूर्ण शरण जाकर भी हमें माता पिता के लिए सदैव प्रार्थना करनी चाहिए उनके उद्धार के। तो ऐसा नहीं है कि हम भक्त हो जाएं तो फिर हमारा माता पिता से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, एक वैरागी पुरुष संपर्क बहुत कम रखता है परिवार से, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए प्रार्थना नहीं करता या उनके लिए अच्छे भाव नहीं है उसके हृदय में। तो ये तो जरूर रहना चाहिए। थोड़ा अंदर बोल कर आइए, हर बार क्लास में क्यों कहना पड़ता है। तो ये जो इस तरह से जब हम लोग जीवन समर्पण करते हैं तो हमारे कर्तव्य पूरे हो चुके हैं, चाहे वो देवताओं के प्रति हो, ऋषि मुनियों के प्रति हो, जनसाधारण के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो, पितरों के प्रति हो, सारे कर्तव्य पूरे हो चुके हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसे कर्तव्यों को हमें करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने अब योग माया में डाल दिया था भक्तों अपने माता पिता को, और इसीलिए वो ऐसे कह रहे थे तो माता पिता उसको स्वीकार कर रहे थे। हाँ ठीक है, तो बता रहे थे कि अगर कोई पुत्र नहीं कर पाया और हमें क्षमा कर दीजिए, उन्होंने क्षमा मांगी कि हमें क्षमा कर दीजिए। तो अब योग माया के प्रभाव से उन्होंने तुरंत कृष्ण बलराम को अपनी गोद में ले लिया और बड़े प्रेम से कालिंदन करने लगे, जो एक माता पिता को करना। तो कृष्ण भक्तों को योग माया में क्यों डालते हैं? अरे अच्छा भला आपको भगवान मान रहे थे तो क्या जरूरत थी वो भाव हटा देने की? हम लोग देखते कई स्थान पर यशोदा के भी ब्रज में, हम लोग देखते हैं यशोदा जब उसने विश्वरूप देखा तो यशोदा को भी लगा ले रहे, तो भगवान फिर हटा दिया भगवान ने, नहीं नहीं ये तो मेरा बच्चा है। तो क्यों भगवान ऐसा करते हैं? उसका कारण है कि श्री कृष्ण अपने आप को भगवान कहलाना ही नहीं चाहते। केवल श्री कृष्ण हैं जो अपने आप को भगवान नहीं कहलाना चाहते, बाकी सब अपने आप को भगवान कहलाना चाहते हैं। देवता इंद्र इत्यादि तो देख चुके गोवर्धन लीला में, अपने आप को भगवान, अरे मेरे से आगे कैसे निकल गए। तो देवता तक इस भाव में आ जाते हैं कि हम अपने आप को भगवान कहलाना चाहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी इस भाव में आ जाते हैं। विश्वामित्र मुनि का उदाहरण है, मैं भेज सकता हूं, मैं इसको स्वर्ग में भेजूंगा, कोई नियम नहीं है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इस भाव में है, देवता इस भाव में है। तो इसीलिए कृष्ण इस भाव को पसंद नहीं करते, वो खुद भी नहीं चाहते हैं भगवान कहलाना। हालांकि वो है, इसलिए लोग कहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, लेकिन वो कहलाना नहीं चाहते। तो हमें कृष्ण के पद चिन्हों पर चलते हुए भक्तों को भी ये सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि कोई आवश्यक नहीं है अपने आप को भगवान कहलाने की भावना को बढ़ाने का, उसको समाप्त करना चाहिए। कृष्ण के सच्चे अनुयायी बनना चाहिए जिसके द्वारा हम लोग भगवान के धाम वापस जा सकें, भगवान को आनंद दे सकें, भक्ति कर सकें। और जब हम लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति क्यों की जा रही है, क्यों कहा जाता है कि भक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से हम भगवान के धाम वापस जा रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्नता हो रही है, कृष्ण चाहते हैं हम सब जाएं, और इसीलिए कृष्ण इंतजार कर रहे हैं कब कब ये जीव मेरी ओर मुड़ेगा। और हमारे वापस जाने में दो चीजें बहुत बड़ी बाधा है हमारे भगवान के धाम वापस जाने में, इन दो चीजों को भक्त को बहुत संभालना चाहिए। पहला है असत्संग। हम जब भगवान की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, असत्संग हमें पथभ्रष्ट करता है। ये असत्संग व्यक्ति का हो सकता है या हमारे मन का भी, तो असत्संग से बहुत बचना चाहिए। कई उदाहरण हैं के कारण व्यक्ति का भक्ति में पतन हुआ, जैसे अजामिल का उदाहरण, असत्संग उसने देख लिया तो असत्संग था। यह कहना चाहिए कि भरत महाराज आसक्त हो गए किससे, हिरण के बच्चे से, असत्संग। असत्संग उसे कहते हैं ऐसा हर संग जो आपको कृष्ण भक्ति से अलग ले जाए, ऐसा हर संग जो आपकी आसक्ति कृष्ण के अलावा किसी और चीज में बढ़ाए वो असत्संग। तो भरत महाराज ने जो किया वो असत्संग था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका पतन हुआ इतनी ऊंची अवस्था पर होते हुए भी। यमुनाचार्य की कथा है, यमुनाचार्य इतने महान आचार्य जो आगे चलकर बने, लेकिन बहुत अच्छे भक्त थे, मगर असत्संग, अपने राजा के रूप में कई ऐसे असत्संगियों का संग किया, भक्ति को भूल गए, फिर बाद में प्रयास करके उनको फिर से लाया गया। तो ऐसे कई उदाहरण है। इसलिए पहली चीज ये हमें जानना चाहिए कि भगवान के धाम जाने में सबसे बड़ी बाधा है असत्संग, और दूसरा है वैष्णव अपराध। ये दोनों बहुत खतरनाक है। वैष्णव अपराध, महाराज चित्रकेतु ने शिव जी के प्रति अपराध कर दिया, पतन हो गया। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो पतन नहीं था, क्योंकि चेतना उनकी कृष्ण में बनी थी, लेकिन बाहरी दृष्टि से असुर का शरीर लेना पड़ा, धृतराष्ट्र। तो इसीलिए, और ऐसे कई उदाहरण अपराध, शिव जी के प्रति दक्ष ने अपराध किया तो कैसे उसका सर कट गया, बाद में उसको बकरे का सर लगाना पड़ा, इत्यादि ऐसे बहुत से उदाहरण शास्त्रों में। तो ये जो दो चीजें हैं इससे भक्तों को बहुत बचना चाहिए कृष्ण की ओर जाने। तो ये जो दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि जब हम असत्संग करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, तो हृदय में भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं दोनों से। इस जगत में तीन प्रकार के लोग हैं जो कभी सुखी नहीं रहते। पहले वो जिन्होंने हृदय में बहुत कामनाओं को बढ़ा रखा है, जो हमेशा इस जगत से कुछ चाहते हैं, वो कभी सुखी नहीं रहेंगे। क्यों सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमेशा उनको किसी न किसी चीज की कामना रहेगी, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो, वो मिल गया तो वो मिल जाए, धन मिल गया तो और मिल जाए। तो जिन्होंने इस जगत में कामनाओं को वास दे रखा है अपने हृदय में, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। दूसरे प्रकार के लोग जो इस केवल इस छोटे से भोग को नहीं, जो सारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करना चाहते हैं, ऐसे योगी, वे कभी सुखी नहीं रहते। जो सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, यष्ट सिद्धियां मिल जाए तो हम फिर यहीं बैठे बैठे जो चाहे कर सके, किसी के मन को नियंत्रण कर सके, किसी के जीवन को नियंत्रण कर सके, ऐसे योगी भी कभी प्रसन्न नहीं रहते। और तीसरे प्रकार के लोग जो मुक्ति की कामना करते हैं, वो भी कभी प्रसन्न नहीं रहते इस जगत में। क्यों नहीं रहते, अरे मुक्ति की कामना तो बड़ी अच्छी बात है, इस जगत के परे जाना, नहीं वो कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। और ऐसे कई धर्म हैं जिनमें भगवान की सेवा को महत्व नहीं दिया जाता, मुक्ति को महत्व दिया जाता है। वो ऐसे कार्य करते हैं, ऐसी कड़ी तपस्या करते हैं जिससे हम मुक्ति को प्राप्त कर लें, सेवा को नहीं, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। भागवत कहता है उन्हें वापस आना पड़ता क्योंकि सुख नहीं है। तो जो मुक्ति की भी कामना करते हैं वो कभी सुखी नहीं है। जो भोगों में भोगों की कामना कर रहे हैं वो सुखी नहीं है, जिन्होंने सिद्धियों की कामना कर ली वो सुखी नहीं है, लेकिन जो भगवान का भक्त बड़ा सरल जीवन जी रहा है, कोई उसके पास सिद्धि नहीं है, कोई उसके पास बहुत भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन अगर भगवान की सेवा में लगा है तो वो सुखी है, और आज नहीं तो कल वो पूर्ण सुखी होगा। लेकिन ये तीनों लोग ना आज सुखी होंगे ना कल सुखी होंगे, तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हम जाने कि श्री कृष्ण ये व्यवस्था करते हैं भक्तों के लिए कि वो भक्ति का आस्वादन कर सके। तो अब जब माँ बाप माता पिता ने बहुत अच्छी तरह से प्रेम जारी कर दिया, और फिर उस समय श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राजा बनाया कि आप राजा बनिए। तो उग्रसेन ने कहा मैं क्यों, तो उग्रसेन उम्र भी हो गई थी और फिर स्वयं श्री कृष्ण हैं तो वो क्यों नहीं राजा बने। तो मानिए उग्रसेन ने प्रश्न किया भाई आप क्यों नहीं बन जाते राजा, तो भगवान कहते हैं कि हम तो बन नहीं सकते, श्राप है हमें, यदुवंशियों को श्राप है ययाति महाराज का। तो ये कथा हम लोग सब जानते हैं, ययाति महाराज की कथा, किस प्रकार ययाति महाराज को बड़ी भोग करने की इच्छा थी और उस भोग की इच्छा में वो इतने पड़ गए कि उन्होंने शुक्राचार्य के प्रति अपराध कर दिया। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओ तो भोग ही नहीं कर पाओ, तुमको बड़ा दुख हुआ, उन्होंने क्षमा याचना की और फिर ययाति महाराज को कहा कि ठीक है अगर तुम्हारे पुत्रों में से कोई भी एक पुत्र तुम्हें अपनी युवावस्था दे देगा तो तुम युवक हो जाओ, वो उसको बुढ़ापा लेना होगा और तुम युवक हो जाओ। तो ययाति महाराज सोच रहे थे मेरे तो सब लायक बच्चे हैं, तो आए यदु महाराज के पास, उनके बड़े पुत्र यदु महाराज के पास, उनसे कहा। तो यदु महाराज ने इतनी भर्त्सना की उनकी, उन्होंने कहा ऐसे काम के लिए, काम वासना की पूर्ति के लिए आप ऐसे कार्य करना चाहते हो, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो क्योंकि काम वासना इतनी तीव्र थी उनके हृदय में, वो भोग करना चाहते थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारे कोई वंशज इस राजगद्दी पर नहीं बैठे। फिर अपने छोटे बेटे कहा, उसने तुरंत दे दिया तो उसके वंशज बैठे। तो उसको याद करते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें तो श्राप है ययाति महाराज का, हम तो बैठ नहीं सकते, ये तो वंशी हैं हम लोग, तो इसलिए आप बैठिए। वैसे देखा जाए तो एक दृष्टि से उग्रसेन भी यदुवंशी, लेकिन कृष्ण के कहने पर बैठ रहे हैं, कृष्ण की आज्ञा पर, ठीक है भगवान ने कहा तो सब कुछ सारे नियम हो जाते, भगवान नम्रता दिखा रहे थे कि हमें श्राप चाहते तो बैठ सकते थे। तो फिर मानो उग्रसेन ने सोचा कि ठीक है अगर आप मुझे बिठा देंगे तो बहुत सारे लोग हैं आक्रमण करेंगे, मैं कैसे संभालूंगा। तो श्री कृष्ण का आप चिंता नहीं कीजिए, हम लोग हैं ना, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपके सेवक के रूप में रहेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, और जब तक हम हैं तो आप ये जान लीजिए कि जितने बड़े बड़े देवता हैं वो भी आकर आपको प्रणाम करेंगे, फिर साधारण राजाओं का तो कहना ही क्या, अर्थात आप चिंता मत कीजिए, राज्य कीजिए। तो उग्रसेन ने स्वीकार किया और फिर उग्रसेन राज्य जब उनका राजा बना दिया उनको, तो उस समय जितने भी यदुवंशी भाग गए थे इधर उधर कंस के भय से, उन सबको बुलाया, आप सब आइए, चिंता नहीं कीजिए, अब कुछ नहीं होगा, कंस नहीं है, तो सब आ गए जो अलग अलग थे, सारा भय निकल गया। और फिर अब श्री कृष्ण नंद महाराज के पास गए, काफी समय बीत गया था, नंद महाराज के पास गए, नंद महाराज इंतजार कर रहे थे कि चलो इसको कुछ थोड़े काम करने दो फिर हमारे साथ चलेगा वापस, इसलिए बैठे थे ठीक है राजा बना दिया ये कर दिया। लेकिन अब आकर उन्होंने कहा कि आपने और यशोदा ने बहुत हमारी सेवा की, हमें बड़ा प्रेम दिया, हालांकि हम आपके पुत्र नहीं हैं फिर भी आपने, अब तो पता चल गया था पुत्र नहीं है, अब तो सब जगह हो गया था कि देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने जो प्रेम दिया ऐसा प्रेम ये कि जो ऐसे बच्चे थे जिनको फेंक दिया गया था, छोड़ दिया था जिनके माता पिता ने, एक दृष्टि से वसुदेव जी छोड़ा है, तो जिनको छोड़ दिया गया था उनकी आपने इतना प्रेम दिया उनको, तो हम बहुत आभारी हैं आपके, ऐसा वो नंद महाराज को कहते हैं कि हम बड़े आभारी हैं आपने ऐसा किया, और आपका जो प्रेम है उसको तो हम उसका कोई मूल्य हम चुका नहीं सकते, आपने हमारी इतना प्रेम दिया, अब आप लोग वापस जाइए। नंद महाराज को उन्होंने कहा आप जाइए, मैं थोड़े समय में आऊँगा। ये नहीं कहा कि अब मैं कभी आने वाला नहीं हूँ, बस आखिरी बार। तो उन्होंने कहा नहीं, आप चलिए थोड़े समय में। नंद महाराज ने जब ये सुना, उन्होंने गले लगाया, आंखों में आंसू आ गए कि कृष्ण को छोड़कर जाना है, लेकिन नंद महाराज ने सोचा कि ठीक है, यहाँ राजकाज का कार्य होगा, थोड़ा सा करके फिर आ जाएगा। तो इसीलिए नंद महाराज और अन्य जितने भी गोपगण थे, फिर वो वहाँ से चले गए, वापस उनको भेज दिया। बहुत से उन्होंने उपहार दिए उनको और फिर उनको भेज दिया। तो आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं अपने भक्तों के साथ। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे सोने को जब अग्नि में रखा जाता है तो फिर सोना तप कर खराब हो जाता है, या वो अपनी महत्व को बढ़ा लेता है। इसी तरह जब श्री कृष्ण भक्तों को विरह की अग्नि में रखते हैं, या विप्रलंब भाव में या विरह की अग्नि में रखते हैं, तो उससे जो भक्त की भक्ति है वो बड़ी तीव्र हो जाती है। तो कृपा करते हैं भक्तों पर जब वो विरह भाव प्रदान करते, विप्रलंब भाव श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये विप्रलंब भाव है, ये हम देखते हैं कि जब भी भगवान आते हैं इस भाव को प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये विप्रलंब भाव केवल कृष्ण लीला में है। रामचंद्र जी भी आए तो कहा जाता है कि मूल कारण रावण का वध करना था, लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी लीलाओं से इस विरह भाव को अधिक प्रकट किया। अयोध्या वासी बहुत प्रेम करते थे, चले गए छोड़कर। वहीं पर वर्णन है कि रात को सब रुके हुए थे उनके साथ, भगवान नदी पार करके चले गए, विप्रलंब भाव प्रकट किया। सीता देवी के साथ उन्होंने वन में गए तो सीता का हरण हो गया, वापस आए तो फिर सीता को भेजना पड़ा वन में, उन्हें किसी के कहने पर, लोग निंदा कर रहे थे। कई बार लोग कहते भगवान राम ने अच्छा नहीं किया, दरअसल भगवान राम ने सीता देवी के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए किया, कि लोग उनकी निंदा नहीं करें, दुनिया को पता चल जाए कि सीता कितनी शुद्ध है। तो भगवान राम ने विप्रलंब भाव, विरह भाव को प्रकट किया। श्री कृष्ण आए, ब्रजवासियों को छोड़ा, विरह भाव प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने अपने भक्तों को छोड़ा, संन्यास ले लिया, विरह भाव में उन्होंने उनको डाला। वैसे हर स्थान में हम देखते हैं भगवान जब भी आते हैं तो इस चीज़ को महत्व देते हैं। ये जो विरह भाव है, दो भाव होते हैं भक्ति में, एक मिलन और एक विरह। मिलन का भाव जब कृष्ण के निकट हो, विरह का भाव जब कृष्ण सामने ना हो लेकिन उनकी जो स्मरण है वो उससे भी तीव्र हो जो मिलन में था, उसको विरह भाव कहते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण ने नंद महाराज इत्यादि को भेज दिया वापस, और फिर अब वसुदेव जी ने व्यवस्था की। अभी तक तो श्री कृष्ण वहां रह रहे थे, कोई उनके संस्कार नहीं हुए थे, तो द्विज संस्कार, उनको द्विज बनाने का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था की। ब्राह्मणों को बुलाया और बहुत दान दिया, विशेषतः उन्होंने गायों का दान दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो उन्होंने गायों को दान दिया था मन से, उन गायों को जिनको कंस ने चुरा लिया था। जब कंस ने इनको बंदी बना लिया तो उनकी सारी गायों को चुरा लिया था, सब संपत्ति ले, तो फिर भी उन्होंने दे दिया दान, उस समय नहीं था मन में, लेकिन अब उन्होंने उसका स्मरण करते हुए विशेष, अब कंस से सारी गायें वापस आ गई थी, उन गायों को उन्होंने दान किया, 10,000 गायों को, जो श्री कृष्ण के जन्म के समय वसुदेव जी ने की थी। तो ऐसे उन्होंने गायों का दान किया, और फिर श्री कृष्ण ने आगे ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। ये उन्होंने गर्ग मुनि से स्वीकार किया, मतलब औपचारिक रूप से वो ब्रह्मचारी बने, ब्रह्मचर्य व्रत का वो पालन करेंगे। और फिर अब उन्होंने सोचा कि अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, अब शिक्षा लेनी है, गुरुकुल जाना है, तो सांदीपनी मुनि के आश्रम में वो गए जो अवंती में है, अर्थात समय उज्जैन में है, तो वहां ज्ञान लेने के लिए। तो सांदीपनी मुनि ने उन्हें ज्ञान दिया और ऐसे वर्णन है कि 64 कलाओं को उन्होंने 64 दिनों में सीख लिया। उन सारी सीख ही नहीं लिया, उसको बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने पालन किया। तो ऐसे श्री कृष्ण ने वहां पर उज्जैन में अपनी शिक्षा पूरी की। और अब जब शिक्षा पूरी हो गई तो स्वाभाविक है कि गुरु दक्षिणा देनी होती है। गुरु से जब ज्ञान लिया तो दक्षिणा देनी चाहिए। तो श्री कृष्ण ने अपने गुरु से पूछा कि भाई क्या गुरु दक्षिणा हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि गुरु जानते थे कि उनकी क्या शक्ति है, कौन है ये। तो उन्होंने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया कि क्या दक्षिणा मांगे, ऐसी मांगे जो केवल ये दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं मांगे जो वैसे भी हमें मिल सकता है। तो उन्होंने फिर चर्चा करके ये सोचा कि कुछ समय पहले हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई। वो गए थे तट पर, जल के तट पर, वहां पर और फिर उनको ले लिया गया समुद्र में। तो पता नहीं क्या हुआ, तो वो उसकी मृत्यु हो गई है, तो अब उसको वापस लाने के लिए कहा जाए, ये काम कृष्ण कर सकते हैं, कोई कर नहीं सकता। तो उन्होंने कृष्ण बलराम से कहा कि हम आपकी शक्ति को जानते हैं और अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमारे उस पुत्र को वापस ले आए। श्री कृष्ण का अभी कोई चिंता नहीं, चल दिए तुरंत, आए समुद्र के तट पर। और वहां पर उन्होंने जैसे ही आए, श्री कृष्ण तट पर आए, बस इतना ही वर्णन है कि तट पर श्री कृष्ण आए, तुरंत जो अधिष्ठाता देव है वो बाहर आ गए। उन्होंने प्रार्थना की, बताइए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ आए हैं मेरे तट पर, क्या सेवा कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हमारे गुरु का लड़का दे दो, बच्चा आपने ले लिया है। सुनिए, मैंने नहीं लिया, मेरी इतनी हिम्मत, मैं आपके गुरु के बच्चे को ले लूँ, मैंने बिल्कुल नहीं लिया। अच्छा, फिर किसने लिया? वो एक राक्षस है, 5 जन, जो मेरे जल में ही रहता, बड़ा शक्तिशाली, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, उसने ले लिया, वो खा गया आपके गुरु के पुत्र को। अच्छा, तो श्री कृष्ण फिर प्रवेश कर गए जल में और नीचे जाकर उन्होंने, वहां पर एक राक्षस था, 5 जन। दरअसल आचार्यगण समझाते हैं कि जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, राक्षस हुए, लेकिन दरअसल भक्त हैं भगवान के, वैसे ही 5 जन ही भक्त था, मगर एक असुर के रूप में भगवान की लीला में भाग लेने के लिए। तो 5 जन वहां पर था, भगवान ने उसका वध किया। उसने अपने शरीर के चारों ओर एक शंख प्रकट कर लिया था, एक शंख बना लिया था। तो भगवान ने जब उसको मार दिया, उस असुर को जिसका नाम था 5 जन, फिर उस शंख को ले लिया जो भगवान का शंख है 5 जन्य। तो क्या प्रश्न आता है कि इससे पहले उनके पास ये शंख नहीं था 5 जन्य? इस लीला में नहीं था, अभी तक नहीं था, अब मिला। हाँ, लेकिन वैसे 5 जन्य ये जो उनका शंख है, ये शाश्वत रूप से भगवान के साथ रहता है। तो भगवान के जितने भी शाश्वत आयुध हैं वो उनके साथ ही रहते हैं, कभी कभी लीला में अलग अलग समय पर प्रकट होते हैं। अच्छा, अब उनको ये मिला, अब उनको कौमुदकी मिली, अब उनको ये मिला। तो ऐसे 5 जन्य उनको अब मिला, तो उसको उन्होंने अपने पास रख लिया। भगवद गीता में हम लोग पढ़ते हैं, 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, भगवान ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, तो वो शंख है भगवान का। तो भगवान ने उसको ले लिया, फिर देखा पुत्र कहाँ है, पुत्र नहीं मिला, अरे यहाँ भी नहीं है। तो फिर यम की नगरी में चल गए भगवान कि वहां से लेकर आएंगे। तो भगवान पहुंचे यमराज के नगरी में, बाहर ही पहुंचकर उन्होंने शंख बजाया। और कहते हैं कि जैसे ही भगवान ने शंख बजाया तो जितने भी वहां पर नरक थे, अलग अलग प्रकार के, उन सब शांत हो गए। जैसे वहां एक नरक है जिसमें जो पेड़ के पत्ते हैं वो शूल की तरह है, मतलब इतने जोर से चुभते हैं, वो सारे गिर गए। रौरव नाम का एक नरक है जिसमें रुरु नाम के बड़े भयंकर प्राणी जो कष्ट देते हैं, वो सब समाप्त हो गए, ठंडे हो गए, शांत हो गए। और जितने भी नरक के वासी थे उनको इतनी शीतलता अनुभव हुई भगवान के शंख बजाने मात्र से, और इतना ही नहीं, आचार्यगण समझाते शीतलता ही नहीं, जितने भी उस समय नरक में थे वो सब का उद्धार हो, वो सब भगवान के धाम वापस चले, नरक से खाली हो गया नरक। तो जब यमराज जी ने देखा तो वो तो बोले मेरे तो ड्यूटी पूरी गई, मेरा तो क्या हुआ ये, तो वो भाग कर आए, भगवान को प्रणाम किया, मेरी तो आप नौकरी निकाल दी, क्या करें हम, जब नरक खाली हो जाएगा करेंगे क्या। तो उन्होंने पूछा क्या कर सकते हैं आपके लिए, बड़ा बहुत प्रसन्न हुए यमराज, भक्त हैं, बड़े प्रसन्न हुए कृष्ण को देखकर, उन्होंने प्रणाम किया, बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे जो गुरु के पुत्र हैं अपने पूर्व किसी कर्म के कारण यहाँ पर आ गए हैं, आप उन्हें मुझे दे दीजिए। तो तुरंत यमराज अभी गए और लेकर आ गए, ये लीजिए, बस इतनी सी बात और कहेंगे क्या कहें। तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं कुछ नहीं, फिर उसको लेकर वापस आए और अपने गुरु को उन्होंने दक्षिणा दी कि ये लीजिए आपका पुत्र, और अब बताइए और क्या दें। अभी इस पर रुके नहीं कि देखिए हमने इतना बड़ा काम कर दिया, फिर हाथ जोड़कर बोला अब बताइए और क्या करें आप बताइए। तो उस समय गुरु इतने प्रसन्न हो गए क्योंकि ऐसा उपहार तो उन्हें कोई नहीं दे सकता था। तो उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर गुरु को और किस चीज़ की कामना रह जाएगी। तो यहाँ दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली, हमें अपने गुरु को वो गुरु दक्षिणा देनी चाहिए जो अन्य कोई नहीं दे सकते। अर्थात क्या अर्थ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम गुरु को दे सकते जो अन्य कोई नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग दे रहे हैं, हम लोग थोड़ा धन देते हैं बहुत सारे लोग दे रहे हैं, हम लोग कुछ कार्य करते हैं बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हम दे सकते हैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में, ये जानते हुए कि उन्होंने हमें पूरा ज्ञान दिया है जो अन्य कोई नहीं दे सकता। हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने एक विशेष गुण दिए, लक्षण दिए, विशेष गुण हर एक को दिया। उस विशेष गुण का उपयोग अपने गुरु के प्रसन्नता के लिए, गुरु के गुणगान के लिए करना चाहिए। जो भी हमारे अंदर कला है, बुद्धि है, ज्ञान है, सेवा भाव है, सब जो है उसको हमें गुरु को देना चाहिए। तो वो आप में विशेष है, हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में भगवान ने विशेष दिया, हम पहचानते नहीं इस समय, तो गुरु की कृपा से वो भी पहचान सकते। तो जो भी हमारे अंदर सर्वोत्तम चीज हो, जो भी हमारे अंदर सर्वोत्तम क्षमता हो, उसको हमें गुरु की सेवा में लगा देना चाहिए। और दूसरा, कार्य ऐसे करने चाहिए जिससे गुरु ये कह सके कि आप जैसा शिष्य पाकर गुरु और किसी चीज की कामना नहीं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये सोचा होगा जब प्रभुपाद जी जैसा उनको शिष्य मिला, और प्रभुपाद ने भी सोचा जैसे उनको उनके शिष्य मिले। तो ऐसे हमें बनना चाहिए। गुरु परंपरा का सही अर्थ ये, गुरु परंपरा का अर्थ केवल इतना नहीं है ये गुरु का शिष्य दूसरा शिष्य इत्यादि। गुरु परंपरा का अर्थ है कि हर शिष्य एक ऐसा शिष्य बने कि जिस पे अब हमारे अपने गुरु को, उनके गुरु को गर्व हो, जिस पर उनके गुरु कह सके कि ऐसा शिष्य पाकर अब और कुछ काम की कामना नहीं। ये सही दृष्टि में गुरु परंपरा है। तो गुरु परंपरा बनाए रखना है तो ऐसे कार्य करने हैं जिससे गुरु का गुणगान हो, ऐसे कार्य ना करें जिससे गुरु के मान सम्मान पर कोई भी ठेस पहुंचे। तो ऐसे उन्होंने कहा और फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि अब आपकी शिक्षा पूरी हुई है, आप अब वापस अपने स्थान पर जाइए। तो गुरु से अनुमति लेकर कृष्ण और बलराम दोनों वापस मथुरा आए। जैसे ही उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया, वर्णन किया गया कि इतने प्रसन्न हो गए मथुरावासी कि ऐसा मानो कि किसी का बहुत बड़ा धन खो गया हो, वो वापस उन्हें मिल गया। तो ऐसे मथुरावासियों ने कृष्ण का स्वागत किया वापस। और फिर अब कुछ और दो तीन अध्यायों में, कुछ अध्यायों में हम लोग मथुरा की लीला को पढ़ेंगे, इससे पहले कि कृष्ण द्वारका में प्रवेश करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 इससे पहले कि प्रश्नोत्तर प्रारंभ हो, एक छोटी सी सूचना है। मंदिर से जुड़े हुए कुछ भक्त ये प्रहलाद स्कूल चलाते हैं, बच्चों को कुछ शिक्षाएं देते हैं, और पिछले कुछ समय से वे लोग कुछ प्रतियोगिताएं भी कर रहे हैं बच्चों की, अब तो घर में बैठे हैं किसी ना किसी तरह कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते में जो प्रतियोगिताएं हुई थी उनमें जो बच्चे जीते हैं उनके नाम यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो ये अब आने वाले हफ्ते में भी जो प्रतियोगिताएं होंगी उनमें जो बच्चे जीतेंगे उनके नाम अगले रविवार को अनाउंस किए जाएंगे और उनको गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे, प्राइजेस, और वो यहाँ से हम लोग ऐसे भेज देंगे, आप लोग ले लीजिएगा। तो पहला है कि श्लोका रेसिटेशन में, श्लोका पढ़ने में, आप लोग जहाँ भी हैं सुन रहे हैं तो बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर से हरि बोल जरूर बोलिएगा। तो श्लोका रेसिटेशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है यशिका, क्या नाम है, याशिका, ठीक है। आप लोगों ने हरि बोल नहीं कहा, जो घर में बैठे उन लोगों ने नहीं कहा, प्लीज बोलिए। और दूसरा रामायण और महाभारत की क्विज की गई थी, क्विज प्रतियोगिता, तो उसमें जो प्रथम आए हैं वो है आलिशा, हरि बोल से। कोई प्रश्न है किसी के?
तो जैसे हम सुनते हैं कि भगवान हमें प्रोग्राम्ड लवर नहीं बना सकते, कि भगवान कर सकते हैं ऐसा बट वो हमें प्रोग्राम्ड लवर नहीं बनाना चाहते, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐश्वर्य भाव का जो प्रेम का व्यक्त होता है वो एक अलग तरीके से होता है, तो जब भगवान अपनी योग माया से कवर कर देते तो इजंट इट जस्ट लाइक प्रोग्राम पेरेंट्स?
प्रश्न ये है कि भगवान ये नहीं चाहते कि हम एक रोबोट की तरह एक प्रोग्राम्ड लवर बने, कि भगवान ने सब व्यवस्था कर दी बस हम प्रेम करे जा रहे, हमारे कोई जो स्वतंत्रता है जो हमारा भाव है हम उसको नहीं प्रकट करें। तो जब भगवान अपने भक्तों को इस योग माया में डाल देते हैं तो क्या ये प्रोग्राम लवर नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका कारण ये है कि उन लोगों का भाव है वही प्रेम का, वो उनका मूल भाव है, वात्सल्य भाव है जो भी है, लेकिन वो ऐश्वर्य भाव से ढक जाता है तो भगवान उसको हटा देते हैं, मतलब जीव का मूल भाव प्रकट हो सके। प्रोग्राम नहीं कर रहे भगवान, प्रोग्राम किसको कर सकते हैं? जिसका वात्सल्य भाव नहीं है उसको उन्होंने वात्सल्य भाव में डाल, वो प्रोग्राम हो गया। अब उसका तो भाव ही नहीं है, वो साख्य भाव में है, बट आप उसको प्रोग्राम करके वात्सल्य भाव से कर उसको प्रोग्राम कर, ये इनका मूल भाव है, कभी कभी ऐश्वर्य से ढकता है तो भगवान उसको हटा देते हैं। दरअसल जब कहा जाता है कि भगवान योग माया के प्रभाव में डाल देते हैं, तो उसको इस तरह समझना है कि जो माया या ऐश्वर्य का प्रभाव हो रहा है उसको हटा दिया उन्होंने, ताकि अपने मूल भाव में स्वतंत्रता से प्रेम कर सके, उस वात्सल्य भाव को प्रकट कर सके। तो हर एक के लिए नहीं, हर एक को, जैसे साखी को तो उसको सखा के रूप में, उसको अन्य रूप में, तो प्रोग्रामिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल भाव को प्रकट करने के लिए जो भाव आ गए हैं टेम्परेरी उसको भगवान हटा रहे हैं, तो इसलिए प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, उल्टा डी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि अगर कुछ प्रोग्राम आ गया है उसको हटा दिया, ठीक है।
इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कितना भी बड़ा क्यों, उनकी माता के ऊपर कभी ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं पड़ता कि ठीक है होगा प्राइम मिनिस्टर, तो एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि शुद्ध जो वात्सल्य है, शुद्ध साख्य है, उसमें इवन पता भी हो कि ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, हमें क्या फर्क पड़ता है।
यस, तो ये भाव केवल वृंदावन में देखा जाता है, जो कि जिसको, जैसे अर्जुन ने जब कृष्ण के विश्वरूप को देखा तो ऐश्वर्य भाव से ढक गए, लेकिन जो ब्रज के भक्त हैं सखा इत्यादि, उन्होंने क्या क्या नहीं देख लिया, कृष्ण ने इतना मारा, ब्रह्मा जी आकर पूजा कर रहे हैं, सब देख लिया, लेकिन कभी ऐश्वर्य नहीं। तो ये ब्रज के भक्तों की विशेषता भगवान ने रखी, और केवल ब्रज में, बाहर ब्रज के सारे भक्तों को ऐश्वर्य भाव पा सकता है। कारण उसका कि वो वैसे भी ऐश्वर्य भाव दास तो है ही, मूलतः तो हम लोग सब दास हैं, तो भाव आ सकता है। तो भगवान ने ब्रज के भक्तों को श्रेष्ठ बताने के लिए, उनका महत्व बताने के लिए इस चीज़ को ब्रज तक रखा है, ब्रज के भक्तों को कभी नहीं आता ऐश्वर्य भाव, उनके ग्वाल बाल देखते ठीक कर लिए चलो लाइन में खड़े हो जाओ, वो देखते नहीं है गरीब तो भगवान इसकी पूजा करनी है। तो इसीलिए ये सही है कि आना नहीं चाहिए, लेकिन साधारणता में जगत में आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है, भले उसकी मां का वो भाव रहेगा, लेकिन वो पब्लिक में कैसे उसके साथ आचरण करेगी? वो ऐसे आचरण नहीं करेगी जैसे घर में करती है। पब्लिक में वो बड़े ध्यान से यहाँ आएगा, बैठेंगे, उठाइए, सब करेंगे, उसको देख के प्रधानमंत्री है। हाँ, जब वो अंदर अकेले में जाएगी, मान लीजिए अकेले में माता से अपनी मदर माँ से मिल रहे हैं, तब वो हो सकता है सर पर हाथ फेरे या जो भी करे कि पब्लिक में थोड़ा संभालते हैं। तो ऐश्वर्य भाव यहाँ भी देखा जाता है कि थोड़ा बहुत रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन ब्रज के भक्तों में बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? हाँ जी,
मतलब जो है लेकिन अगर हम लोग के रूप में देखें तो जो है हम लोगों को भी भक्ति में जो होता है वो विरह भाव के भक्ति करने को कहा जाता है, लेकिन गोपियों के लिए जो है आसान नहीं था कि गोपियाँ या फिर जो है भक्तों के लिए उनके लिए आसान था क्योंकि उन्होंने कृष्ण को देख लिया था और फिर जब उनसे वो दूर चले गए तो उनका जो है स्मरण, उनकी लीलाओं का स्मरण, ये सब जो है बहुत तीव्र हो गया और उनके लिए आसान होगा। और लेकिन हम लोग अभी मिले ही नहीं है, ना कोई रियलाइजेशन है, ना कुछ है, बस जो थोड़ा बहुत आचार सुना है उससे कैसे?
पहला चीज, गोपियों के लिए सरल नहीं था क्योंकि हमने अभी देखा नहीं है, मिले नहीं है हम लोग। वो तो मिल चुकी थी, जो कृष्ण के साथ रह चुके थे, कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन कर सकते थे, पहुँच चुके थे, उनके लिए कितना कठिन होगा कृष्ण को छोड़ना। तो ऐसा नहीं कि उनके लिए सरल था विरह भाव, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कठिन था। हमारे लिए सरल है कृष्ण के विरह लाना, हमारे लिए सरल है क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं, कृष्ण के साथ आनंद नहीं लिया, वो तो आनंद ले चुकी, तो फिर कृष्ण का जाना हृदय को तोड़ता है। दूसरी बात आपकी कि हमने देखा नहीं है तो कैसे वो विरह भाव आए, ये स्वाभाविक है कि हमने आदान प्रदान, जिससे जैसे आप मान लीजिए किसी मित्र से आदान प्रदान करते हो, उसके साथ 4 साल 5 साल 6 साल रहते, फिर वो जब जा रहा है तो स्वाभाविक है आपको विरह का भाव लगता है, ऐसा लगता है कि वो चला जाए, कृष्ण के साथ हम रहे नहीं, तो कैसे विरह का भाव है। इसीलिए प्रारंभ में ये विरह के भाव की प्रेरणा नहीं दी जाती, प्रारंभ में हम रहे, प्रारंभ में हमें हृदय को शुद्ध करने की प्रेरणा दी जाती है, जप करना, कथा सुनना, इसके लिए है कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें। शुद्ध हृदय में, शुद्ध हृदय क्या है? शुद्ध हृदय वो है जहाँ कृष्ण का वास है, उसको शुद्ध हृदय कहा है। शुद्ध हृदय वो नहीं है जहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य नहीं है, वो शुद्ध हृदय नहीं है, पूर्ण शुद्ध नहीं है। पूर्ण शुद्धता किसको कहेंगे? ये शुद्ध हृदय किसको हम कहते हैं? इसका हृदय बहुत शुद्ध है, इसके हृदय में कृष्ण है। तो जब भक्ति के मार्ग के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो वो विरह भाव स्वतः प्रकट होगा। इसलिए हमें ये प्रेरणा नहीं दी जाती कि हमें जबरदस्ती स्वतः जबरदस्ती उस भाव में आना है, हे राधे ब्रजदेव के चरण दे, हे नंद सुमन कुता, नहीं, वो आएगा समय तब ठीक है, तब तक जो मार्ग हमें दिया गया है उसका कड़ाई से पालन करना। फिर ये सब क्यों बताया जाता है? ज्ञान होना चाहिए कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। जैसे अभी आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो तो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए PhD का आपको कुछ लेना देना नहीं है। बच्चे तीसरी चौथी क्लास पांचवी क्लास छठी उसको क्या पता पड़ा PhD का क्या है, लेकिन उसको फिर भी बताया जाता है भाई 10वीं पास करोगे उसके बाद आप 12वीं करोगे, उसको ज्ञान रहता है, 7वीं 8वीं 9वीं का सब ज्ञान रहता है कि कहाँ तक जाना है, अभी उस तक पहुँचने के लिए क्या करना है, बहुत कड़ी मेहनत, क्या भाव होना, वो सब बात की बात है, लेकिन कम से कम ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अभी हमारी अवस्था में हमें विरह भाव को कल्टीवेट करने का प्रयास नहीं करना, हमें सिर्फ इस समय गुरुदास बनना है, जैसा गुरु कहें उस भाव में हमें करना है। जब कहा, जैसे प्रभुपाद से पूछा कि जब, उन्होंने ये नहीं कहा कि बस विरह भाव में आंखों में आंसू लाओ और कृष्ण का स्मरण करो तब सही है, उन्होंने केवल सुन, क्योंकि हमारी अवस्था भी उतनी है। प्रारंभ की अवस्था में हमें केवल भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए वैदिक भक्ति का पालन करना, फिर जब वैदिक भक्ति करते हुए हम रागानुग भक्ति में जाएंगे और तब विरह भाव का अनुभव प्रारंभ होगा। ठीक है? हाँ जी
प्रभु, हम इसी को शिक्षाष्टकम के प्रेयर से भी समझ सकते हैं कि जो भजन क्रिया और अनुष्ठान निवृत्ति के स्टेज में नाम नाम कार्य बहुधा जैसा बताते हैं ना कि वो 8 स्टेज
रहते, इसलिए पहली स्टेज कहिए तो दर्पण मार्ग होता है, तो हम सीधे नहीं जाते हैं कि युगायत अग्निमेशन, तो हम जाते कहाँ हैं, पहले चेतो दर्पण मार्जनम, फिर उसके बाद अन्य अवस्थाओं को होते हुए धीरे धीरे फिर हम उस अवस्था तक पहुँचते हैं। शिक्षाशास्त्र कम से बहुत अच्छा उसको कनेक्ट कर सकते हैं। प्रश्न कहाँ सारे क्वेश्चन आते वृंदावन में सबसे कम समय क्यों दिलाया भगवान ने? अभी तो भगवान को पूछिए, हमें क्या पता, हम तो इतना बता सकते कितना समय बिताया, क्यों इतना कम समय बिताया तो भगवान की इच्छा। पहला कारण ये है कि भगवान की इच्छा, और ये परम कारण है, उनकी इच्छा थी, उन्होंने उनकी इच्छा थी 18 साल बिताए मथुरा में, 18 बिताए। तो पहला कारण इच्छा। दूसरा कारण, ब्रज की लीलाएं इतनी मधुर हैं कि अगर कृष्ण थोड़ा समय और बिता लेते तो कंस को मारना भूल जाते, तो फिर उन्होंने उनको याद दिलाया गया कि बस 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 अब ज़्यादा बदलिए, नारद ने आके याद दिलाया। और एक कारण हो सकता है कि कृष्ण तो विरह की भक्ति को महत्व देने के लिए जितना उनका समय इस पृथ्वी पर है उसमें से अधिक समय उन्होंने विरह की भक्ति प्रदान की ब्रजवासियों को, मिलन की नहीं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, ओके। और प्रश्न है, यमुनाचार्य जी कौन थे? हमने यमुनाचार्य जी पर बहुत बार प्रवचन दिया हुआ है। यमुनाचार्य जी वैसे रामानुजाचार्य के गुरु माने जाते हैं, श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, प्रमुख आचार्य में से एक हैं। तो उनके जीवन के विषय में बहुत हमने बोला हुआ है, आपको शायद मिल जाएंगे अगर विस्तार से आपको सुनना है तो प्रवचन सुन लीजिएगा। गोकुल में नंद जी का भवन है, नंद गांव में भी है, तो वृंदावन में क्यों नहीं है, और है तो वृंदावन का कौन सा स्थान? ऐसा हुआ था कि जब वो गोकुल से आए और वृंदावन में आए तो वर्णन है कि उन्होंने एक स्थान को चुना, अभी इस समय वो छठीकरा के पास वो स्थान है, छठीकरा अगर आप लोग जाएं वृंदावन में तो आप जानते स्थान, तो वहाँ पर चुना। उस समय जंगल था, कोई रास्ते तो थे नहीं, हाईवे बना नहीं हुआ था, दिल्ली आगरा हाईवे, तो जंगल था, तो वो वन में रहे वनवासियों की तरह। उन्होंने बैलगाड़ियों को अर्धचंद्र आकार में वहाँ पर रखा और वो सुरक्षा के लिए, और एक तरफ पर्वत था दूसरी तरफ ऐसे अर्धचंद्र आकार में रखा और बीच में वो लोग रहे। अर्थात आपको स्मरण होगा कि कृष्ण ने गोवर्धन लीला के समय नंद महाराज से कहा था कि हम लोग शहर में रहने वाले नहीं हैं, गांव में रहने वाले नहीं, हम वनवासी हैं। तो वे उस तरह रहते थे वहाँ पर, इसीलिए वृंदावन में कोई उनका स्थान नहीं है। नंदगांव में क्यों है? नंदगांव में गोकुल जाने से पहले भी वो स्थान था, क्योंकि वो राजा हैं तो वहाँ पर उनका महल बनाया गया था। फिर वो लोग केशी के कारण छोड़कर चले गए, वहाँ आ गए, और फिर अंत में भगवान ने केशी को भी मारा, तो इसीलिए वृंदावन में उनका महल नहीं है, लेकिन स्थान है जहाँ पर वे ऐसे बैलगाड़ियों को लगा कर वो लोग रहे थे। जब करते समय नींद को कैसे दूर रखें? आंखें खुली रखें। जब करते समय अगर नींद आ रही है तो क्या क्या करना चाहिए? पहली चीज, रात से तैयारी करनी चाहिए। रात को हम इतना खा लेते हैं कि फिर सुबह नींद आना स्वाभाविक है। भगवान का नाम इतना मधुर है कि जैसे ही जिह्वा पर आता है आंखें बंद हो जाती हैं। तो पहली चीज हमें ये करनी है कि हम रात से तैयारी करें, अर्थात बहुत कम खाएं, जल्दी सोएं, ताकि हम समय पर उठ सकें और सुबह के समय फ्रेश हों। दूसरी चीज, अगर हमें आँख खुली रखनी है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हर शब्द सुन रहे हैं, क्योंकि जब शब्द सुनते नहीं है तो पता भी नहीं चलता कब आँखें बंद हो गई, कहाँ गए, और फिर कोई बताए भी तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, मैं जग रहा हूँ, मैं योग निद्रा में, मुझे ताकत करो। तो आंखें खुली रखने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। कई बार भक्त आंख बंद करके जब करने का प्रयास करते बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि फिर सोने के प्रभुपाद एक जगह पे कहते कि हमने कई योगियों को आंख बंद करके ध्यान करते हुए देखा है, सब सोते हैं। प्रभुपाद कहते हम लोग भी ऐसा नहीं है कि भक्त कर नहीं सकते, हम ये नहीं कह रहे कि मना है, हम ये कह रहे हैं कि जब आंख बंद करके प्रयास करते तो नींद आ जाती है, पता भी नहीं चलता कब आ गई, तो प्रयास करें आंखें खुली रखें, हो सके तो प्रभुपाद के सामने बैठें, प्रभुपाद को देखते रहें, या किसी भक्त के साथ में बैठें और उनको बोल कर कहें कि अगर मेरी आंख बंद हो जाए तो उठा दे। हम लोग ऐसे कहते नहीं है, हम लोग सोचते रहे कि अब सोचेगा भक्त, नहीं कुछ भी सोचने दीजिए, उनको बोल दीजिए कि अगर मैं बात सोच रहा हूँ तो मुझे उठा लीजिए। ऐसे धीरे धीरे आदत हमें डालनी चाहिए, सीधे बैठ कर जब करने का प्रयास करना चाहिए, अगर बैठ कर नींद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा खड़े होकर कर सकते हैं, लेकिन प्रयास संघर्ष हमें करना चाहिए। ठीक है, गतो मुकुंद, ये कौन सा श्लोक है भागवतम में आप ढूंढ लीजिए, इसका प्रारंभ होता है देव ऋषि भूतार्थ निणाम वितृणाम न कि करुणाय मृणी चराजन सर्वात्मन यरण शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित करता। यही श्लोक है, कौन सा श्लोक है, यही श्लोक है, आप इसको ढूंढ सकते हैं। एक बेटी का क्या दायित्व है माता पिता के प्रति, क्या कर सकते हैं उनके लिए? भक्तों के रूप में जो कार्य एक बेटा कर सकता है वही एक बेटी कर सकती है। भगवान कहते हैं कि भक्ति सबके लिए है, तो अगर हम भक्त हो गए हैं तो हमें भक्तों के रूप में वही कार्य करना चाहिए जो एक पुत्र करता है। क्या पुत्र करता है कार्य? जब वो भक्ति करता है, माता पिता के लिए प्रार्थना करता है, अपने सारे भक्ति के फल को अर्पण करता है, उनसे भगवान से प्रार्थना करता है कि जैसे ध्रुव महाराज जी की मुझसे पहले मेरे माता को लेकर जाइए भगवान के धाम, तो ये पुत्री भी कर सकती हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं उसका लाभ दें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जो माता पिता हैं वो मुक्त हो जाएं, उनको भक्ति प्रदान हो, जैसे प्रहलाद ने प्रार्थना की अपने पिता के लिए, तो वो पुत्र भी कर सकते हैं। तो जो भी कार्य पुत्र कर सकते हैं भक्त के रूप में, वो पुत्री को भी करना चाहिए। देवकी और वसुदेव जी इतने बड़े भक्त थे कि भगवान उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए, तो फिर भी वे भगवान की बाल लीलाएं नहीं देख पाए और उन्हें बहुत कष्ट भी सहना पड़ा, ऐसा क्यों? हम भगवान की बाल लीलाएं नहीं देख पाए क्योंकि भगवान उनकी विरह को बढ़ा रहे थे। भगवान ने ब्रजवासियों की विरह को बढ़ाया ब्रज से यहाँ आकर, और जन्म लेकर यहाँ से वहाँ चले गए ताकि इनकी विरह को बढ़ा सके और इनमें वो तीव्रता उत्पन्न हो सके। तो बाहरी दृष्टि से अगर देखें तो हाँ ये सच है, इतने बड़े भक्त होते हुए भी उनको कृष्ण का सानिध्य नहीं मिला, बाल लीलाएं नहीं देख पाए, तो उन्हें कष्ट सहना पड़ा। लेकिन अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि यशोदा और नंद महाराज केवल 10 वर्ष तक कृष्ण की सेवा कर पाए, देवकी वसुदेव ने बाकी पूरा समय किया। कई ऐसी चीजें हैं जो कह सकते हैं, यशोदा और नंद महाराज ने कृष्ण के विवाह में भाग नहीं लिया, देवकी वसुदेव थे विवाह के समय जब श्री कृष्ण के विवाह हुए, तो आप इस तरफ को भी सोचिए कि श्री कृष्ण ने केवल 10 वर्ष उनको दूर रखा लेकिन बाकी सारा समय उनके साथ रहे, दूसरी ओर नंद महाराज यशोदा को केवल 10 वर्ष का संग दिया और बाकी समय उनके साथ नहीं रहे। तो ये तो कृष्ण लीला है कि किसी भक्त को वो कुछ समय देते हैं, किसी भक्त को कुछ ज़्यादा, लेकिन ये दोनों तरफ से कभी भी गलत नहीं है। तो अब अगर हम ये बताएं तो आपको ये गलत लगेगा कि आप यशोदा और नंद के साथ गलत हो गया, इतने वर्ष उनके साथ रहे उनके साथ केवल 10 वर्ष, आपको तो प्रश्न उल्टा होना चाहिए था। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें भगवान ने की, ये केवल आनंद बढ़ाने के लिए, लीलाओं के पूर्ण करने के लिए, इसलिए हमें उनको लीला की दृष्टि से देखना चाहिए, एक भौतिक दृष्टि से नहीं। बार बार ये प्रश्न पूछते हैं सब, भगवान का महाप्रसाद, फिर से हम प्रसाद बनाते हैं। भगवान का महाप्रसाद हम सारे भोजन में मिक्स नहीं करते तो हमें लगता है हम प्रसाद नहीं खा रहे, क्या ये सही है? आपने बोला जो एक बार भगवान को भोग लग जाए तो दोबारा नहीं लगा सकते, तो क्या ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स हम रखते हैं और डेली उसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, तो क्या ये भी गलत है? ओके, बहुत अच्छा, ठीक है। आपको अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है, हो सकता है हमने ही स्पष्टता से समझाया नहीं होगा, गलती हमारी है, इसीलिए आपके मन में ये प्रश्न फिर से आ रहा है। पहला प्रश्न है कि जब हम भगवान के भोग में महाप्रसाद मिक्स नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि प्रसाद नहीं खा रहे, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो भी बना रहे हो वो सारा का सारा भगवान को भोग लगाए, किसी मंदिर में नहीं होता है जगन्नाथपुरी को छोड़कर। तो हम देखते हैं कि भगवान की प्लेट में तो उतना ही जाता है, तो बाकी जो है क्या वो प्रसाद नहीं होगा और हम लोग उसको मिक्स नहीं करें तो हमें लगता है प्रसाद नहीं, ये भावना सही नहीं है। वो महाप्रसाद है और वो प्रसाद है, वो भी प्रसाद है, कृपा है, लेकिन ये विशेष है। और जब उस महाप्रसाद को भक्त खा लेते हैं तो फिर वो महा महाप्रसाद हो जाता है, श्रेणियाँ हैं प्रसाद की। तो हमारा ये कहने का तात्पर्य ये था, हमने ये नहीं कहा कि आपको मिलाना नहीं चाहिए, हमने बैन नहीं किया, मना नहीं किया, हमने ये कहा कि अगर आपको विश्वास है कि भोजन जो आप या भोग जो आपने लगाया भगवान को, बाकी बचा हुआ जो प्रसाद है वो तो फीका नहीं जाएगा, तो आप निश्चित उसमें भगवान की प्लेट का भी महाप्रसाद मिला दीजिए। आप जानते हैं कि दोनों में अंतर तो होगा, है दोनों प्रसाद, लेकिन अंतर तो होगा। आप जब घर पर भी बनाते हैं तो आप एक एक रोटी बनाते जा रहे हैं, तो क्या आप हर रोटी बनाकर पहले भगवान को भोग लगाकर फिर लोगों को देते खिलाते हैं, या दो रोटी लगाने के बाद फिर वो बाकी रोटियां खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्या वो प्रसाद नहीं है? या हर रोटी में आप भगवान के द्वारा खाए हुए रोटी को तोड़कर टुकड़ा उसमें डालते तभी उस रोटी को खाते हैं? हमें तो नहीं लगता ऐसा होगा, शायद आपके घर में होता होगा, वैसा तो नहीं होता है। आपके घर में 10 लोग हैं, भगवान को 2 रोटी लगती हैं, आप उन रोटियों को क्या करते हो? 10 लोगों के लिए आप 20 रोटी बनाते हो, 30 रोटी बनाते हो अलग अलग, तो हर रोटी को पहले जाके ऑफर नहीं करते, या भगवान की प्लेट वाला ही खाएंगे, या उसको मिलाते नहीं हैं अन्य रोटियों में, तो थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया जाता है। इसी तरह जब हम ये मानते हैं कि वो रोटियाँ भी प्रसाद हैं, तो फिर बाकी चीज़ को भी मानना चाहिए कि वो प्रसाद है। लेकिन हाँ, अगर आपकी इच्छा है उसको मिलाने की तो कोई मनाही नहीं है, हमने ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए, उसको मिला दीजिए, बस इतना देखिए कि फिर वो फेंका नहीं जाए, जो भी बचे उसको समाप्त कर दीजिए, उसमें कोई गलती नहीं। दूसरा प्रश्न है कि जो एक बार भगवान को भोग लग जाए तो दोबारा नहीं लगा सकते, तो क्या ड्राई फ्रूट्स के पैकेट? ड्राई फ्रूट्स का हर दाना ये अलग फल माना जाता है, जैसे चावल के दाने हैं। अब हमने चावल की बोरी में से 1 किलो चावल निकाल कर बनाया, भोग लगा दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे के सारे चावल की बोनी जो पूरी है वो प्रसाद हो गई, उसको भोग नहीं लगा सकते। तो पहली चीज़, हर दाना वो अलग माना जाता है। दूसरी चीज़, कच्ची चीज़ और पके हुए में अंतर होता है। जितना भी चावल लेकर आप पका देंगे, या जितने भी ड्राई फ्रूट्स लेकर आप कुछ उसका बना देंगे, फिर उसको नहीं लगा सकते दोबारा। जैसे आपने ड्राई फ्रूट्स लेकर एक बर्फी बना दी और उसको एक बार लगा दी, तो पक गई है, तो कृष्ण के लिए बनी है, अब दोबारा उसको नहीं भोग लगाना चाहिए, एक बार लग गया बस। लेकिन जब तक पके नहीं हैं, जो कच्ची चीज़ें हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, तो इनको तो हम जितना लगाते हैं बाकी का भोग जो प्रसाद नहीं माना जाता उसको भोग लगा सकते हैं। तो आप ड्राई फ्रूट्स लाते हो तो ऐसा नहीं कि आप 1 किलो काजू लेकर आए, आपने भगवान को 100 ग्राम काजू लगाया और बाकी का सारा प्रसाद हो गया, उसको नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं। वो अलग फल है, वो अलग और कच्चा है, तो उसको ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। आगे प्रश्न है, हमारे समक्ष भगवान प्रकट हों तो कैसे पहचानेंगे? जब भगवान साक्षात इस धराधाम में थे आए, तब भी कितने लोग उन्हें भगवान के रूप में नहीं देख पाए, ऐसा क्यों? हमारे लिए तो फिर अधिक चैलेंजिंग है जब वो हमारे समक्ष नहीं है। कृष्ण को भक्ति की भरी हुई आंखों से देखा जाता है। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो संत होते हैं सदैव देखते हैं, कैसे देखते हैं? भक्ति से पूरित आंखों से, जिन्होंने प्रेमांजन यानी प्रेम का अंजन आंखों में लगाया गया। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने न। तो अगर हमें कृष्ण को देखना है तो भक्ति बढ़ाइए और उस भक्ति के आधार पर हम कृष्ण को पहचान सकेंगे। जब कृष्ण हमारे समक्ष आएंगे तो कृष्ण को अगर कृष्ण अपने आप को प्रकट ना करना चाहे तो कोई उन्हें जान नहीं सकता। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं धनमाश्रितं परम भाव अजानन्तो मम तो महेश्वर। तो भगवान अगर चाहें तो वो जो भगवान का रूप है वो किसी को नहीं पता चलता, भगवान छुपा लेते हैं अपने आप को। लेकिन अगर भगवान प्रकट करना चाहें तो फिर स्वतः प्रकट हो जाता। अभी हम लोग रामानंद राय के विषय में सुन रहे थे, रामानंद राय ने जैसे चैतन्य महाप्रभु को देखा वो पहचान गए, तो जानते नहीं थे, कभी देखा नहीं था तो वो पहचान गए। तो भक्ति को बढ़ाइए, अपनी आँखों में प्रेम का अंजन अर्थात कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की सेवा को बढ़ाइए। जिस दिन कृष्ण प्रकट होंगे, अगर वो प्रकट हो रहे हैं आपके सामने, तो आपको ये भी शक्ति प्रदान करेंगे कि वो आप उनको बड़े अच्छे से देख सकें। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कृष्ण और राम के लिए गुरुकुल जाने की क्या आवश्यकता है, वो तो भगवान है, सारे ज्ञान के स्रोत है। सही बात है, उनको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना, कि हे पार्थ तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, ये करना है, काम करना, कोई कर्तव्य नहीं। फिर भी वो करते हैं, क्यों? क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि अगर वो नहीं करेंगे तो एक अन्यों के लिए अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत होगा। तो भगवान यदि आचरति श्रेष्ठस्तत् तदेवे तरोजना, भगवान एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, गुरु के महत्व को समझाने के लिए गुरु को स्वीकार करते हैं। तो ये नहीं कि उनको ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान तो वो गुरु को प्रदान करते हैं। ठीक है, कौन सा श्लोक है भक्तों के बारे में क्या कहना, मेरी भक्ति के लिए अपने निजजनों को त्याग देते हैं, श्लोक कौन सा है? निजजनों को नहीं, श्लोक को जो हमने कोट किया था वो ये श्लोक है कि बिना मत सेवनम जना, जहाँ भगवान कपिल ये कहते हैं कि जब मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ तो मेरे भक्त चारों प्रकार की मुक्तियों को त्याग देते हैं अगर उसमें सेवा नहीं होती। तो वो तीसरे स्कंद में ये श्लोक है जिसमें भगवान कपिल कहते हैं सारूप्य सारिष्टि सारूप्य सामिप्य एवच दीयमानान्न गृह्णाति बिना मन सेवनम जना। अगर मन से किसी वैष्णव के प्रति क्रोध या द्वेष आ जाए या उनके सिद्धांत को समझ ना आए तो हम अपने रिलेटिव से उनको क्रिटिसाइज कर देते हैं, पर वैष्णव के सामने कोई प्रतिक्रिया ना करे तो भी अपराध हो जाएगा? हाँ जी, निश्चित अपराध। अगर हमें वैष्णवों के कोई चीज़ों को समझ नहीं आ रहा है तो हमें ये मानना चाहिए कि मेरी समझ कम है, वो समझा रहे हैं ठीक है लेकिन मेरी समझ कम है तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा, इसलिए क्रोध द्वेष नहीं करना चाहिए और उनकी निंदा चाहे उनके समक्ष या उनके पीछे भी कभी नहीं करनी चाहिए, ये भी अपराध माना गया। ऑडियो नहीं आ रहा है, सोलह माला जप करने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगना चाहिए? सोलह माला जप करने में प्रायः 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि एक माला, वैसे एक माला करने का सही समय है 6 मिनट से 7-7.5 मिनट तक, तो 7.5 मिनट का भी लेंगे तो 2 घंटे 16 माला करने में लगते हैं प्रायः इतना समय। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अधिक कम लग रहा है तो एकदम ये नहीं सोचना चाहिए, हाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है 2 घंटे की जगह आपको 6 घंटे लग रहे हैं 5 घंटे लग रहे हैं, तब सोचना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ है। दूध घी तेल दही शुद्ध माना जाता है, तो दूध दही को अगर उस यूज़ किया है तो भोग लगा सकते हैं क्या? अगर उसको पकाया नहीं है तो भोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको पका लिया है तो फिर भोग नहीं लगता उसे। तो आपने दूध को बॉईल कर लिया और एक गिलास भगवान को लगा दिया तो फिर से उसको नहीं लगा सकते हैं। हाँ, जब तक बॉईल नहीं हुआ है, कच्चा दूध है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, कोई चिंता नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री गुरुपाद की जय।